तीन रोशनी ध्यास और दूसरा राग मार्ग भक्ति लोके प्रचार, ये अब लोक में प्रचार है। कैसे प्रचार किया? अपनी लीला कथाओं को जगत में वहां से उतार करके, और ऐसी सुंदर लीलाएं कि जगत को मुग्ध कर दिया। किसको? जिसको भक्ति थी, और जिसको भक्ति नहीं है वो दुर्योधन कर्ण और दूसरे लोग कंस अघासुर बकासुर उस कृष्ण को देकर के उनका क्रोध प्रज्वलित हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी देखा होगा, जो भी लोगों ने देखा होगा उनका चित्त निर्मल होगा, इस रस में प्रवेश नहीं होगा। रस में प्रवेश किसका होगा? कुछ आधार के ही, बिना आधार के उस किताब को ग्रहण नहीं कर सकता है। कांच में अपना प्रतिबिंब प्रतिफलित होगा, किंतु गंदे लोहे में या लकड़ी में रूप प्रतिबिंबित नहीं होगा, क्योंकि आधार में नहीं। इसलिए ये विभिन्न जो कहा गया किनके लिए, वो लोग भक्त हैं उनके, किंतु हां उनके लिए परस। किंतु और जो हैं, जो देखेगा अव्यर्थ नहीं लीला जाएगी उनकी, कोई भी क्रीड़ा अव्यर्थ होगी, उस रस के या उस कोटि के साधक उसके द्वारा कुछ ऊपर और ऊपर नहीं जाएंगे। जो अत्यंत नास्तिक है वो आस्तिक होगा, जो थोड़ी सी भक्ति है श्रद्धा है उसको निष्ठा रुचि आसक्ति कर सकती है, और जिसको भाव है वो प्रेम होगा। इस तरह से अवश्य कर्तव्य श्रवण करना हरि कथा। हरि कथा यदि नहीं श्रवण करेंगे कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तुम लाख जन्म तक हरि नाम करते करते रट पट करके मर जाओ, कोटि जन्म यदि करे श्रवण तब तो ना पाए कृष्णा पद पर, एक जन्म नहीं कोटि जन्म में। इसलिए कभी भी नाम बल्कि कहीं रह जाए कोई हर्ज नहीं, ऐसे नाम भी नहीं कम रहना चाहिए, जरूर होना चाहिए, किंतु रह जाए कोई हर्ज नहीं। किंतु हमसे उत्तम अधिकारी गुरु वैष्णव वर्ग जब हरि कथा कहते हैं उसकी अवहेलना मत, लाख काम हो उसको पहले आगे निपटा करके जो आवश्यक सेवाएं हैं हरि कथा में जरूर रखना चाहिए, ऐसा ही बनाना चाहिए अपना कार्य। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा हरि कथा रति नैले पंड से धर्मास्तुनिश्चिता पुंसम, धर्म ही क्या बना सम धर्म, इसके बाद में भक्ति धर्म, इसके बाद में और जो भक्ति के अंग हैं उसको भी अपने यहां पर रख लो। ये सब भी कर रहे हैं किंतु हरि कथा में उनकी नहीं है तो पंड से, और हरि कथा में यदि रुचि है तो क्या होगा नाम में भी रुचि ला देगा, एकदम रुचि नहीं है तो भी ला देगा, सत्य देगा। जैसे गुरु जी ने तभी हरि नाम करो, हरि नाम कृष्ण ही साक्षात है, ये कहां से सुनो गया हरि कथा के माध्यम से ही तो।
और कोई उल्टा करे तो
क्या करे,
बोले हम तो है तो हरि कथा में रुचि है, हरि कथा करने कोई सेवा नहीं करेंगे।
तुम्हारा हरि कथा को ग्रहण करना चाहिए ना, जो सोदा मैया सेवा कर रही है, गोपियां सेवा कर रही हैं, तो तुम हरि कथा में यदि रुचि होगी तो इसका मतलब सेवा में भी रुचि है, और नहीं तो होगा। अच्छा तो हाँ हो जाएगा, एक तरह से होगा, कैसे होगा, कुछ ना करे, कोई सेवा मत करे, प्रसाद सेवा भी मत करे, सांस ना ले, आंख से देखे नहीं, कुछ भी मत करे, केवल हरि कथा और कुछ नहीं करें, महाप्रसाद इत्यादि जो कुछ सेवा है, हवा तवाई लेना देना ये सब कुछ देखना कुछ मत करो। हाँ हो जाए, जरूर हो जाएगा, ऐसा करो तो वो तो नहीं, वो महाप्रसाद पाएंगे और सोएंगे, ये दो काम, ऐसा नहीं। एक बंशा होते कृष्ण प्राकट्य, ये जो बतलाए इसमें भी एक गौण और एक मुख्य, किंतु दोनों ही स्वरूपानुमन अनुबंधी हैं। क्यों? ये दोनों स्वरूप शक्ति की ही क्रिया है। बिना स्वरूप शक्ति के ये ऐसा होगा भी नहीं। और कृष्ण का तृप्ति ईशा राजमार्ग भक्ति में ये प्रचार उसका नहीं कर सके। ये स्वरूप शक्ति की क्रिया है। महाप्रभु जो पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्यों को हर सबको जो कि देखने ही उनका प्रेम आ जाता है, ये कैसे अपनी स्वरूप शक्ति की वृत्ति से करें? इसलिए ये स्वरूपानुबंधी है। तथापि रस निर्यास ये स्वरूपानुबंधी स्वयं है और स्वरूपानुबंधी इसका ये दोनों का ये इसलिए कृष्ण का प्राकृत्य कारण है। किंतु रस निर्यास है राधा या प्रणय महिमा की दृश्य हुआ नहीं वास्पा को जीना भूत मधुरिमा की दृश्य हुआ मत। ये मुख का मुख असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। अब ये जो पहला और दूसरा जो बतलाया उसमें जो पहला असुर मारन संहार इत्यादि कार्य पुतना को मारना वध करना अगासुर को वध करना कंस को वध करना ये सब जो कारण है ये विष्णु के द्वारा करा देते हैं। उतना का पद भी तो मरना है क्योंकि उसको जो मातृगति धातृगति दिया ये महाविष्णु काम नहीं कर सकते। यहां तक कि रामचंद्र तक असुर जिनको मारने हतारी गति दायक सब विष्णु तत्व है किंतु उसको प्रेम दे देना है ये बड़ी भारी मार करके मुक्ति दे देंगे। कौन? गति दे देंगे। गति में क्या देंगे? गति उसमें हतारी गति बने बहुत स्तर है। विष्णु जी मार करके कौन विष्णु? क्षीरोदशाई के जो अवतार है युगावतार ये मार करके क्या देंगे? धन धान्य स्वर्ग इत्यादि दे देंगे। गर्भदशाई संग यदि या उनके अवतार यदि मारेंगे तो उसे और भी ब्रह्मलोक तक की गति दे। इसके बाद श्री रामचंद्र इत्यादि करेंगे तो उसको और भी सुगति देंगे। जैसे उन लोगों ने मारा तो वही सब अपने को कृष्ण लीला में जरासंध इत्यादि और सब लोग होकर के मुक्ति नहीं देंगे। मुक्ति देंगे मुक्ति मैंने क्या दिशमान राधा मुक्ति ये नहीं देंगे। ब्रह्मचारी के लिए तो नरक से भी खराब है ये भी नहीं देंगे किंतु हम समझते हैं कि जब ही चाहेंगे तो दे देंगे। कैसे? कोई ऐसा मुक्ति के लिए साधन कर रहा है उसको देंगे मार करके अनायास ही बिना किसी के वो शायद मुक्ति इत्यादि हो जाएगी। नहीं नहीं होगी। यदि इच्छा करे तो हो जाए। रामचंद्र प्रेम भी दे सकते हैं कैसे? भजन कर दे जैसे दिया है सबरी इत्यादि को दिया है। किंतु कृष्ण ऐसे हैं जिसको मारेंगे उसको भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे उसको अपना परिकर बना लेंगे। ये कृष्ण में ही केवल है। तो ये अनुसंग प्रयोजन है ये विष्णु इत्यादि के कार्य है। ये कर सकते थे किंतु स्वयं अपने ऐसे मालूम होता है जो कृष्ण ही पुतना अगासुर बकासुर कंस इत्यादि का वध किया किंतु किया कौन? अलक्षित रूप में विष्णु ने यह काम किया। किंतु ये सर्व के मारा जाने पर भी इनकी गति क्या होगी? मुक्ति से कम नहीं ऊपर है। एम चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान। ये जो कृष्ण चैतन्य है यहां पर लिखा है चैतन्य कृष्ण इसको लगा दो कृष्ण चैतन्य पूर्ण भगवान। यहां पर शायद वो बैठा नहीं तो पूर्णतम भगवान लिख देते पता अब उसी से उसका अर्थ लगा लेना पूर्णतम भगवान। केवल द्वारका वाले और मत पुरुष कृष्ण नहीं ऐसा मत समझना। एम चैतन्य कृष्ण कृष्ण चैतन्य पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहीं पारता। युग धर्म का प्रवर्तन करना असुर संहार साधुओं की रक्षा, देश धर्म की मर्यादा का स्थापन, प्रणाशन धर्म की स्थापना, नाम का प्रचार। कलयुग में नाम सब समय रहेगा, अगला जो कलयुग आएगा उस समय भी नाम प्रचार होगा। और ब्रह्मा के दिन में जितने कलयुग आएंगे, 1000 कलयुग आएगा, 1000 युगों में भी नाम ही युग धर्म रहेगा, किंतु प्रेम युग तो नाम नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कर, यदि विष्णु के शरीर के द्वारा यदि कृष्ण पुतना का वध किया होता है तो उसको क्या गति होती, अधिक से अधिक सायुज्य। किंतु कृष्ण शरीर के द्वारा पुतना का जो वध किया है, इसकी कुछ महिमा और है, इसलिए लेकर के चले गए गोलोक का भातृगति देवी। अब कृष्ण के शरीर में से विष्णु के द्वारा वो हो रहा है, किंतु विष्णु शरीर के नहीं होने के कारण उसका फल इतना चला गया। अब यदि जुगावतार विष्णु उसको मारते तो क्या होता, कोई धन धान्य से पूर्ण भोग वैभव इत्यादि की प्राप्ति होती। इसलिए कृष्ण शरीर के द्वारा जो विष्णु के द्वारा ही हो रहा है यह काम, तभी एक विशेषता है, इस चीज को समझना। इसी जी सुमित कारण से ज्यादा हो जाएगा, इसी लीला में प्रकट होती है, इसी युग में नहीं, ब्रह्मा जी के कौन सा अष्टाविंशति 27वें मनमंत्र, नहीं 14वें मनमंत्र, 14वें सप्तम मनमंत्र, सप्तम मनमंत्र वैभवसत मनमंत्र के 28वें चतुर्युग में यह लीला प्रकट होती है। ठीक स्वयं कृष्ण जो है उनके प्रकट के बाद में ये लीला होती है। इसे सीमित मत कहो, लीला का आविर्भाव होता है। कौनों कारणे जब हईल अवतार नाम युग धर्म काल हईल से काले विषा, जिसमें अवतरण का कारण हुआ, हमको बंबई जाना है एक विशेष कारण से। हमने पत्र दिया, हमारे जो परिचित हैं, मैं बंबई में आऊंगा, तुमसे बातचीत करना है, उससे मिलना है, उसे मिलने के लिए नहीं जा रहा, जाना था और किसी काम से, मिल लिया, इसलिए वो मुख्य कारण नहीं है। इसलिए जिस समय कृष्ण कौन कारण है जब हरिया अवतार कौन, कृष्ण सोच रहे हैं ऐसी सुंदर योग माया के प्रभाव से अपने इस नर्तन को जगत में प्रकाश कर सुंदर विचित्र लीलाओं करके सब लोगों का चित्त हरण करूंगा, और उनके अंदर में इन लीलाओं में तत्पर होने के लिए लोग उत्पन्न करा दिया। अब हमको जाना है, ठीक ये इच्छा करते करते ये इच्छा एक सेकंड में हुई ना, यदि कृष्ण ने एक सेकंड में वो इच्छा की, किंतु कितना समय चला गया इस जगत की दृष्टि से, काल चक्र है ना चल रहा है, इसमें कितने कलयुग इत्यादि सत्य किया, ठीक उसी समय में जिन्होंने जिसमें मैंने निर्धारित किया था उसी समय में युग धर्म काल होगा से काले निशान, युग धर्म का समय भी उसी समय में हो गया, जिसमें बंबई जाने की इच्छा की उसी समय में वो व्यक्ति भी बंबई में था, हमने सोचा कि अच्छा हुआ उसे भी मिल ले। ऐसे ही देखो मैं जा रहा था, मान लिया कि कहीं जा रहा था किसी काम से, मैं जा रहा था, मान लिया कि ये किसी से पैसे लेने हैं, मैं अपने गांव से निकल करके रास्ते रास्ते जा रहा था, वहां हमको 1000 रुपया मिलना है। रास्ते में जा रहा था तो एक बगीचा आया, और बगीचे में आम के बहुत से पेड़ थे, और उसी के मध्य से बगीचा था, रास्ता था, तो जब गए तो एक आम पका हुआ पहले से था, और जिस समय में गया
उसी समय हवा तवा कुछ नहीं थी, एक कोयल आम के सुगंध से उस डाल पर बैठी और डाल हिल गई, हिल नहीं गया, हिल गई, और हिलने से क्या हुआ, पका हुआ आम नीचे गिर पड़ा, और बाय चांस जिस समय वो गिरा मैं उसके ठीक सामने में गया, हमारे सामने में वो गिरा, हम क्या करेंगे, देखा जी पका हुआ लाल तेसू सा बड़ी सुगंध आ रही, उसको उठाया देगा, वाह तो ये जा रहा था मैं वहां, और बीच में उसका भी समय हो गया, टपक गया आम, और आम को रास्ते में चलते चलते चखते हुए चल पड़ा, उद्देश्य तो ये नहीं है था किंतु हो गया बाई चांस। उसी प्रकार से कृष्ण ने जब अवतार का ऐसी सुंदर मधुर लीलाओं को जगत में करुणा करके और प्रकट करना चाहा और समय निर्धारित किया, मैं आज से भविष्य में सात मनमंत्र, छह मनमंत्र बदल जाने चले जाने के बाद में सप्तम में दापर के अंत में अष्टाविंशत चतुर्युग में मैं अवतार लूंगा, फाइनल करके सब अपने सबको ऐलान कर दिया, भाई सब तैयार होना, एक साथ में चलना है, ऐलान कर दिया, और ऐलान करके जब आने का समय तो बाई चांस युग धर्म स्थापन का भी आ गया समय, दो हेतु अवतरी कृष्ण अवतरी लैया भक्तवान अपने अत्याधिक प्रेम नाम संकीर्तन, इन दो कारणों से इसी समय एक दो हेतु, दो हेतु मैंने रसिक सफा पर अवतरी भाई की खराब अच्छे लैया भक्तवान, कैसे भक्तों को दिया, जिनमें वह रस था, कौन सा रस, वही शांत दास सख्त बात्सल्य मधुर, विशेष करके सख्त बात्सल्य प्रेम एकदम भरा हुआ है उन बोतलों को लेकर के, बोतल माने उन भक्तों को लेकर रस से भरे, और इसको ले आए जो वहां पर पीते थे रस, वही रस वाले पात्रों को भरे हुए लेकर के यहां पर आए, अपने आस्वादक अब उसको अपने स्वयं आस्वादक कर रहे हैं, यह रस शिक्षक आ प्रेम नाम संकीर्तन के माध्यम से दूसरों को उसका जो छीटा है उसको दे रहे हैं, वो क्या है, वैसा लोग राधानुजा भक्ति मार्ग ये चीज दे रहे हैं, शहीद द्वारे अचम डाले कीर्तन संचारे, शहीद द्वारे, शहीद द्वारे मैंने की वही प्रेम नाम संकीर्तन द्वारे, और अपना आस्वाद, अपना आस्वाद कर रहे हैं दूसरों को लोभ हो रहा है, एक बदमाश चंडाल एक शुभ्रानी के साथ में वन में विहार कर रहा है और अजामिल गया उसको देखा और क्या हो गया, मरा वो देख करके वो लोग और उनको छोड़ नहीं सका, हजार चेष्टा की मन को शांत करने के लिए मन को कंट्रोल नहीं कर सका, ऐसे ही लीलाओं को देख करके कृष्ण की वैसे ही सेवा करने की आकांक्षा उसमें लोग उत्पन्न हो जाता है, जब लाख चेष्टा से फिर उसको दबाया नहीं जा सकता, इस ये है राग बार का चीज देना, इसको देने के लिए आचन डाले कीर्तन संचार, कीर्तन का संचार किया, आचन डाले मैंने चंदा करके, क्यों घर में रुचि नहीं है, किंतु यदि गाय को सुन करके कान खड़ा करके और वो सुनती है, हिरण सुनते हैं कीर्तन को, घास सुनती है, उनको ऐसी ज्वनि क्यों मिली, ये सब क्या ज्वनियां हैं, तामसिक ज्वनियां, आच्छादित चेतन कौन, वृक्ष लता गुण इत्यादि, इनसे कुछ उन्नत है संकुचित चेतन वाले जो कुछ चलते फिरते हैं, इनसे भी कुछ मुकुली, मुकुलित से भी विकसित, अब वो विकसित से भी, इन सब जीवों को कृपा करने के लिए आचंडाले, जिनको ये सब की रुचि नहीं है, सब समय भोगों में चंडाल का वो होता है ना, चंडालू जो कुकर का मांस पका करके वो खाता है, स्वपच, स्वपच माने स्व कुत्ता,
स्व माने कुत्ता
और उसका मांस जो खाता है यह स्वपच, उसका हजम जो करता है। ऐसे चंडाल के भगवान की भक्ति में रुचि कहां से आई? किंतु रुचि हुई कैसे? नारद जी जा रहे थे, हरे कृष्ण नारायण 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 सुमन नारायण नारायण कहते हुए जा रहे थे, बिना बजा रहे थे, अथवा सबको यहां राजा रज का नाम नहीं जानेंगे, अब लोग यहां क्या करेंगे, बस यही नारायण नारायण सुमन नारायण। और बहनिया ने सुना, बहनिया ने पहले तुमको मारना चाह नहीं मार सका, फिर उन्होंने कहा कि देखो ये किस लिए करता है, देखो तो बस देखा से सब जीव उनको मारने के लिए आ रहे हैं। फिर देखा जी अच्छा तब खा गया जी ये मारने के लिए आए, तब तब कमंडल से जल निकाल कर प्रक्षोप कर दिया, देखा जी बच गया। अरे इतना प्रभावशाली व्यक्ति सताई ने, ऐसे श्रद्धा उस चांदाल की अपने ऊपर में श्रद्धा के लिए तो जो चाहता है नहीं हो जाता है। बस पूछा जी हमारा कैसे उद्धार होगा, कहीं ऐसे छोड़ो धनुष को तोड़ करके फेंक दो, हम जो कहता है करो, हम लोग कहेंगे तो करेगा चंदाल, दस कथा सुना देगा। रास्ते में हम जाते हैं, हमारे एक महाराज जी हैं अभी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, यहाँ आज ही तशरीफ लाए थे, अभी तशरीफ लेकर के गए मथुरा, तो वो रास्ते में जाता ना तो झोली लेकर हरे कृष्ण 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 खूब जोर से करते, और वहां पर आने वाले उनके दिन कहते ये महाराज क्या करें आप चुपचाप रहिए, और ये छोड़ेंगे नहीं वो मानेंगे नहीं, फिर लड़ झगड़ा हो गया, फिर अंत में बाध्य होकर के सब लोग कहें अरे भाई क्यों किया ऐसा, कर धीरे धीरे करने से नहीं होगा, समाज भी ऐसा बन गया है, और यदि अच्छा समाज होता तो क्या होगा, बात बहुत सुंदर है आपकी, कभी उसका फल होगा कि नहीं, प्रतिरोध तो वो कराता ही फल होगा, हरिनाम इतना प्रभावशाली, इसलिए अकंडले संकीर्तन संचार, संकीर्तन संचार करते हैं, शक्ति संचरित करते हैं, धीरे धीरे प्रेम माला बाकी पराई लेता है संसार, इस तरह से आज चंडाल को भी धीरे धीरे युग बनाते हुए उस चंडाल अब नहीं रहा, क्या हो गया प्रेम माला उसको गात करके पहना दिया, कौन सा प्रेम माला पहनाया जो जैसा है उसी को, ये लोग दिया ना राजा भक्ति, इसलिए नाम ऊपर से और हरी कथा सुनना ऐसे साधारण चीज दिखती है किंतु है नहीं, असाधारण शक्ति संपन्न ये चीजें हैं, इसलिए महापुरुष ने इसका, इसलिए हम गुरु वैष्णव का महत्व नहीं समझते, समझने में हो सकता है दो चार जन्म लग जाए, उसका हम दान नहीं कर सकते हैं, पति दान नहीं दे सकते, अपने गुरु से और वैष्णव से कोई उड़न हो सकता है, माता पिता से उड़न हो सकता है, भाई बंधु से उड़न हो जाएगा, कोई धनी आदमी है उसको कुछ दिया उसका उड़न हो सकता है, किंतु गुरु से कभी भी उड़न नहीं हो सकता, इसलिए वह कैसी चीज देता है, इसलिए नाम प्रेम माला गाति पराई दर संसार, यही मत भाव करी अंगीकार, यही मत भाव माने क्या है? भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, करी अंगीकार, अपने आचरी भक्ति करी दा प्रचार, स्वयं भक्ति भजन किया, रात दिन महाप्रभु सो नहीं रहे और हरि कथा सुन रहे हैं, सब दामोदर राय रामानंद जी उनकी कथा सुनाते हैं, भाव में विभोर होकर सुन, और ये लोग चले जाते हैं तो प्राण अब निकला कैसे चिंतन करते हैं उस लीलाओं का, और चिंतन करते 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 अधीर हो जाते हैं, कभी नाक रगड़ते हैं, कभी कुछ होता है, साक्षात रूप में अनुभव करते हैं उन कथाओं का चिंतन करते करते। हम लोगों ने अभी यहां सुना, अभी सुन करके हम लोग भी चले जाएंगे, आप लोग भी दूर हो जाएंगे, मैं भी विषय चर्चा में लग जाऊंगा, आप लोग भी लग जाएंगे, और जो लोग में लगाते यही कथाओं का चिंतन करके हरिनाम कीर्तन करेंगे, लीलाओं का स्मरण करते हुए जीवन निर्वाह के लिए केवल प्रसाद ले लेंगे, अभ्यास बसता और बाकी करते रहे हमें दिन रात इसी की चिंता नहीं। ये सब साधन है जैसा चैतन्य महाप्रभु जी ने किया, जैसे महाप्रभु के जो परिकर है रूप सनातन किया है। संख्या त्रिपक नाम गानमत भी कालावसानु के तौ निद्राहार विहार काद बीच तौ चातंत दीन चौ राधा कृष्ण भस्मते मधुरीनांदे ने सम्मोहित बंदे रूप सनातन रघु गौश्री जी। सीखना चाहिए इससे संख्या पूर्वक नाम गान। भाई तुमने कितना हरि नाम किया, महाराज जी आज नाम नहीं। कोई कहता कि आज मैंने चार बार किया, चार बार नहीं करते, सोलह बार करो। मैंने सोलह नाम बराबर तो ये एक लाख नाम करते। एक लाख नाम करने वाले से पूछते हैं कि मन लगा करके किया ना ऐसे ही किया, कोई दर दर की चिंता ही नहीं, नाम की चिंता ही नहीं, उनकी लीलाओं का स्मरण किया। और तुमने जोर लगा करके किया ना, अपने आप रुचिपूर्वक किया, रुचिपूर्वक करने की चेष्टा। जो कर रहा है उसके लिए ये नहीं कहेंगे इनसे तुम चित्त लगा करके काम करो, लोभ मोह को छोड़ करके करो, उनके लिए कहेंगे? किनके लिए कहेंगे? ये नहीं करते हैं उनके लिए कहेंगे। रूप सनातन को महाप्रभु शिक्षा देंगे, चौबीस घंटा में चौबीस घंटा हरि नाम करो, नारीदासापुर को शिक्षा देंगे। हम लोग जो बहिर्मुख हैं, हम लोगों के लिए रूल रेगुलेशन विधियां ये सब बतलाया गया। सवेरे में उठो, आरती दर्शन करो, अन्निक इत्यादि कर करके सभी लोग मिल करके पाठ में बैठो। इसको जब पाठ इत्यादि हो जाए तो फिर अपने अपने सेवा कार्य में जाओ, और फिर प्रसाद इत्यादि हो जाने पर ठाकुर जी का भोग लगा करके आरती इत्यादि का दर्शन करो। इसके बाद में प्रसाद पा करके वैष्णव को दे करके प्रसाद पा करके दो पार में सो मत, उस समय में ग्रंथानुशीलन करो और हर नाम कीर्तन करो। शाम को फिर ठाकुर जी को जगाओ और ये करो, रात में ये करो। ये सब विधियां किसके लिए है? स्वयं रूप में जिसको रुचि नहीं है उन लोगों के, उन लोगों के लिए आचार किया महाप्रभु ने। देखो ऐसे संख्या पूर्वक नाम गान तुभि कालावसानी कृत निद्राहार विहार कादृत चातंत दीनौ चौ राधा कृष्णानुरस्मते मधुरिमान्दे सम्मोहित वंदे रूप सनातन रघुजगौसी जीव गोपाल। कैसे कर रहे हैं? गुण उसके गुणों में एकदम विभाजित हो गए हैं, एकदम विभाजित होकर के उनको याद, दिन रात का याद। कैसे? राधा संकटे कलिंद तने आतीरे चवंशी बटे प्रेम प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च पदाहरे गुणगणं भावाभिभूतं वंदे रूप सनातनं रघुजगौ। किस प्रकार से करें इन स्थानों में? हे राधे बजले बज देवी के चलते नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कौपाद पतले कालिंदी गन्ने कुता घोषणित सर्वतौ हे दई महाविहुवल वंदे रूप सनातन रघुज गौसी जीव। इस प्रकार से नाम लेने पर क्यों नहीं प्रेम होगा? यही चैतन्य महाप्रभु ने नाम प्रेम की माला सब जीवों को ऐसा भजन करना सीखा। किसके लिए? महाप्रभु ने ऐसा किया और परिकरों के द्वारा किया। इसके लिए आपने आचरी, महाप्रभु जी को आचरण की जरूरत है, रूप सनातन को जरूरत है, रूप मंजरी रति मंजरी लवंग मंजरी इनको जरूरत है भजन का अभ्यास करने का। अरे दिन रात उनके लिए, वो दिन रात कभी नहीं सोएंगे, कभी नहीं विषय में लगाएंगे। ये हम लोगों के लिए दिख रहा है आचार आप करी आप प्रसाद, ये दूसरों के लिए। दास सख्य बात चल ले यार ये सुनवा चार प्रेम चतुर्विध भक्त रधार निज निज भाव सबे श्रेष्ठ कर माने निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। आस्वादन आस्वादन कर रहे, किसका आस्वादन कर रहे? दास सख बात्सल्य आर्य श्रृंगार चार प्रेम चतुर्विध भक्त ही आधार, भक्त लोग आधार। कौन भक्त?
शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त माने वहां वाले राजाओं वही लोग उनके आधार हैं, और इनको आधार बनाएंगे पीछे, जब उनके संग से उनका भी हृदय ऐसा हो जाएगा तब उसको आधार बनाएंगे। फिर निज भाव, निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करना, और ऐसा बनाया कि अपना अपना भाव हनुमान जी जानते हैं कि हम इस अब यही सबसे श्रेष्ठ है, श्री राम जी जानते हैं कि हमारा यही है, सुबल जी क्या सब मिलते हैं, ये जो कृष्ण की सुख में जो सेवा कर रहा हूं, अभिसार करा रहा हूं, कृष्ण की गैयों को हाँ करके ले आ रहा हूं, और सब जो राधिका जी का मान कृष्ण नहीं हटा सके, और सुबल जी जा करके एक मिनट में कैसे हटाया, कृष्ण मनाते मनाते हार गए, नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो सुबल जी आए बोले कृष्ण की स्थिति बड़ी बदतर है, अभी एक दो मिनटों में न जाने हो सकता है कि वो इस जगत से ही चल बसे, यदि अंतिम समय में देखने की इच्छा है तो आप चल सकती हैं, और नहीं तो आप आराम से रहिए, मैं चला, ये कह करके चले और उनसे रहा नहीं, बस ठीक हो गया। ये सुबल जी कहते हैं हमारे लिए यही अच्छा है। सखियां क्या कहती हैं, सोचते हैं कहते हैं यही सब, उसको बदल नहीं सकते, ऐसे आधार में जो प्रेम है उसका निर्जात आस्वादन करते हैं कृष्णा, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन, कृष्ण इसका आस्वादन करते हैं निर्जास को। तटस्थैया मने विचार जब करी सब रस हलते सिंगारे अधिक माधुरी, तटस्थ रूप में सभी रस श्रेष्ठ है, ऐसा कोई श्रेष्ठ नहीं जो नहीं श्रेष्ठ है, दास सख बात सभी मधुर सभी अपने में श्रेष्ठ, किंतु जब अच्छी तरह से विचार करके इनके तटस्थ होकर के इन पांच से हट करके और केवल विचार करेंगे तब देखेंगे जो मधुर में सबसे श्रेष्ठ माधुर में है उसी का सबसे आस्वादन करते हैं। इसी समय में श्यामला जी ने कहा अच्छा आज बतलाओ तो सखी आज कैसा विलास का आस्वादन आपने, तो ये तो हमको मालूम, मैंने देखा और मैं इसके बाद में नहीं जानती जैसे क्या हुआ, और मैं यहां घर में लौट आई यही तब देखती जब होश आया, मुझे तो होश नहीं था, कहीं आपके चक्कर याद करके जाना और सीख करके आना ये कैसा इसमें आनंद है, कहे सखी हमारे अंदर में ये सीख, मैं बहुत डरती हूं आप ही जाकर के सीख लीजिए, वो कह रही हैं जैसे सीखना और आस्वादन करना दोनों अलग अलग चीज है, सीखना और आस्वादन, जब आस्वादन होगा तब फिर दोनों एक होकर के ना नासो रमणी नासो रमन, दोनों एक हो गया, उसमें मैं ये विचार के ये कैसा हो रहा है कैसा है मैं कहां हूं ये कौन है ये सब नहीं रहेगा। जिस समय आदमी खूब सुंदर जगन्नाथ जी की दाल और अन्न बना है, ठाकुर जी का महाप्रसाद बहुत सी स्वादिष्ट, बड़ी भूख लगी है, मैं यहां से गया और दिन रात हमको गाड़ी में तीन दिन रहना पड़ा, फल फूल इधर उधर से लेकर के कुछ खाया पिया, वहां गया बड़ी भूख लगी, जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचा, सोच रहा जी कब प्रसाद मिले, और जहां प्रसाद आई तब बाप के समान झंप देकर के अब प्रसाद खाया, उसमें ये कैसे बना क्या था इसमें टेस्ट है ये नहीं उस समय समझा, उस समय क्या होगा हाँ बड़ी भूख लगी, वाह 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 भूल जाते हैं उसे, यदि पूछे कोई तो कहेंगे भाई हमने तो उस समय देखा नहीं कि इसमें कैसा क्या ठीक ऐसे है, इसलिए तटस्थ होकर के विचार करने में ये सब विचार रहेगा देखों रस में क्या है नहीं, और नहीं तो उस रस में रहने वाला व्यक्ति को ये सब मालूम नहीं होता, वो समझता कि हमारा ही यही सबसे अच्छा है मैं इसको छोड़ करके नहीं, जैसे स्वर महारानी को पूछा जाए जैसे आप चलिए स्वर्ग में वहां पर अमृत रखा है कहीं नहीं हमारा यही जो जो सर्वश्रेष्ठ खाद्य है यही हमारे लिए बहुत सुंदर है मैं वहां पर, अरे यहां पर वहां पर सब ये मिलेंगी मेनका इत्यादि अप्सराएं, अरे ये क्या सूखा गंदी सर, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते हमारी प्रिया ऐसी हमारे बच्चे इतने अच्छे नहीं जाएगा, ऐसे हम लोगों की दशा है,
इसलिए हमारी रुचि उधर नहीं हो रही। यदि महाप्रभु और उनके गणों की कृपा होगी तो फिर हम लोगों के ऐसे ही हो जाएगा। इसी को उन्होंने बतलाया है, भक्तों स्वामी सिंधु के जथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लास मयपि रति पास में आस्वादी भाषते क्वापि कष्ट। इसका हम इसकी व्याख्या हम लोग कल करें। पंचाकल्प कृभ्य कृपा सिंधु भय वच पर
मधुर सारे
श्यामल मुख्यता मंदीकृतंदी वरम जातं जाहुदरोचि सांगुदपतं पट्टंबर श्रिय मुंदारण्यनिवासिनं निजलशद्धामाभिरामि राधास्कन्दविवेचितजलभुजं ध्यायेन्ताम् भक्त्यादि विना परादलक्ष्यै चित्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। गौरचंद्राय राधिकाय इतराय कृष्णाय कृष्णभक्ताय उत्तरभक्ताय नमो। यन्त्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैतायनो विरह कातरयादिः पुत्रेति तन्मेतया तर्वो भेद तं सर्वभूतहृदयं मुनीनां कृष्ण। तवैवास्मि तवैवास्मि न दुरानि त्वयानि इति विज्ञान राधे तं मे मां शरणं। चैतन्यचरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। कृष्ण परम करुण हैं और वे रसिक चूड़ामणि हैं और इन्हीं दो कारणों से वे जगत में अवतीर्ण हुए, रस में जासास्वादन करने के लिए और राग मार्ग अनुग्रह करके राग मार्ग का प्रचार करने के लिए। और राग क्या चीज है, रस किसको कहते हैं, इसके लिए समझाने के लिए राधा क्या चीज है, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है,
एक चीज को समझाने के लिए इन्होंने अब तक कुछ भूमिका के रूप में बतलाया। जहां तक ऐश्वर्य का भाव है, कृष्णा प्रभु है, वो भगवान है, मैं क्षुद्रों का अंश दास हूं। जब तक यह भाव रहेगा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं होगा। जिस समय शुद्ध भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से कृष्ण की लीला कथाओं में उसको रुचि होगी, क्रमशः लोभ उत्पन्न होगा, तो धीरे 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 भजन के साधन के प्रारंभ से ही उसका साधन भजन ठीक उसके अनुरूप चलेगा। जिसको चैतन्य महाप्रभु जी अनुग्रह करके राग मार्ग प्रचार करने के लिए आए, यदि कोई अनुभव उसको करेगा, अनुसरण करेगा, तब तक फिर इन चीजों को सहज से समझ जाएगा, अन्यथा नहीं समझेगा। बतला रहे कि दास सख बात्सल्य और मधु ये रतियां जिनमें है वो रागात्मक जन है। वो लोग अपने अपने भावों को ही सर्वोत्तम समझते हैं, किसी को सर्वोत्तम मान करके आकृष्ण के प्रति वैसा ही अनुराग करते हैं। जो लोग इनमें से किसी एक में जागृति हो जाएंगे या स्थायी भाव जिनको मिल जाएगा भगवान के कृपा से, तब फिर वो विचार नहीं कर पाएंगे, या विचार करेंगे उस स्थिति में जब वो तटस्थ होकर के विचार करें। जैसे रूप गोस्वामी जी का अपना स्थायी भाव है, तो ही जगत के कल्याण के लिए तटस्थ होकर के यहां पर लोगों के लिए ये विचार दिया है। सभी लोग हनुमान जी अपने भाव को समझ समझ समझेंगे, इसको छोड़ उनको यही अच्छा लगता है, उनको ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि दास्य बड़ा है कि सख्य बड़ा है कि शांत बड़ा है कि बात्सल्य बड़ा है, ये सब नहीं देखेंगे। कर रहे हैं उनमें उनकी रुचि है, बस यही विचार नहीं करेंगे। उसी तरह से जो यशोदा मैया ये विचार करने नहीं बैठी कि हमसे भी श्रेष्ठ ये गोपियां हैं, यदि ऐसे विचार करने बैठेंगे तो उसके तरफ में चली जाएंगे, इसलिए उस समय विचार उठता नहीं है। इसलिए तटस्थ या मने विचार यदि करी सब रस हिते श्रृंगारे अधिक मादी। अभी हम लोगों को कोई अभी स्थायी भाव नहीं, अभी हम लोगों के रस का कोई मूल्य नहीं,
विचार कम करें,
विचार करेंगे रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी विचार करेंगे, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी परंपरा में अपने गुरु तक सब ये लोग विचार करें, हम लोग अभी विचार नहीं करेंगे।
एक हाथ तो बोल लो जी रस से प्रवेश करते श्रेष्ठ मन करें।
अभी हम लोगों का जो इसके विचार में है अभी स्थूल भाव भरा पड़ा है। कृष्ण का मधुर रस मैंने हम जगत में एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके और पुरुष अपने स्त्री को छोड़ करके प्रेम करते हैं, बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इस पर न देकर के रूप गोस्वामी ने जो विचार दिया है उसको समझने की हम लोगों को केवल चेष्टा करना है गुरु वैष्णव की कृपा से, बस यही कर। अभी अधिक विचार मत करो, विचार यही करो कि वही ठीक है, ये विचार तो ठीक है, जो वही ठीक है, अब इसको हम कैसे पाएंगे यही तक विचार करो। और नहीं तो जब विचार करेंगे तो हम देखेंगे शांत रस सबसे श्रेष्ठ है, यह विचार करें शांत और कोई श्रेष्ठ ही नहीं है ये जगत का। इस जगत में विचार लेने से यही दिखता है और उससे कम है दास, वो भी अच्छा है, वो बात्सल्य से और मधुर से अच्छा है। किसी प्रकार से बात्सल्य रस तक को ग्रहण किया जा सकता है,
किंतु मधुरस को कभी ग्रहण नहीं किया गया विचार करना इस जगत के विचार से। इसलिए अभी ये सब विद्या बुद्धि छोड़ करके गुरु जी जिस रूप में समझ करके हमको बतला रहे हैं जितना तक कर रहे हैं बस उतना ही तक आगे बढ़ेंगे आगे में उनके अनुगत्य में। और ये समझ लेना चाहिए गुरु वैष्णव जो लिखा है वो परम सत्य है। अब इसको ये समझना है किसको बड़े बड़े विद्वान लोग हो जाएंगे सब कुछ हो जाए विचार कहां से आएगा। कहा गया है अभी विचार कर रहा था एक आदमी से देश बड़ी बुरी चीज है ठीक है ना किसी से देश नहीं करना चाहिए किंतु ये तो हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति हमसे देश कर रहा है हम इसे देश नहीं करेंगे समझेंगे कि नहीं तब इसका मतलब है कि हम भी वैसे ही ये विचार ही नहीं है। जब वो किसी से देश नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो समझेगा कि कोई भी हमसे देश नहीं करता। और ये केवल अनुकरण करने की बात नहीं है अभ्यास से भी नहीं होगा ये सब जाएगा भगवत भजन से और गुरु वैष्णव यदि सच हैं तो उनकी कृपा से जाए नहीं समझ सकते हैं लाख चेष्टा करेंगे यहां तक मध्यमाधिकारी भी हो सकेंगे विचार आया तत्वों का किंतु ये सब चीजें नहीं जाएंगी उसका इसी में गंदा रह जाता है। जब वो मानेगा कि अपने कर्म का फल है या भगवान की यह अनुग्रह हो रहा है ऐसा हो रहा है तब यह होगा नहीं तो किसी को शत्रु मानने के लिए बाध्य है हमारा विद्वेषी मानने के लिए बाध्य है। कोई गाली दिया तो हम समझेंगे हमको गाली दे रहा है हरिदास ठाकुर नहीं समझेंगे इस चीज को समझो। इसलिए ये कह रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं उत्तम भक्ति ग्रहण करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं अभी मध्यम अधिकारी में भी पहुंच गए हैं ऐसे लोगों के लिए ये सब विचार दिए जा रहे हैं। लोग दूसरे सुन करके ये समझेंगे भी नहीं व्यवहार नहीं अभी उन लोगों के लिए यही है मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं बस यही सब समझो। ये जगत हमारे लिए लाभदायक नहीं है जगत की सब चीजें मिलकर के भी हमको हमारा कल्याण नहीं होगा यही अभी समझे। और वैष्णव लोग जैसा कह रहे हैं हम उसको अक्षर से पालन करने की चेष्टा करें। गुरु जी ने कहा कुछ अंतर्भाव से एक हम लोगों ने दूसरे रूप में समझ करके दूसरे रूप में दिया इसलिए अभी साधन भजन हम लोग ठीक से करें तब इनको हम समझेंगे। उसे कहते हैं तटस्थ या मने विचार जदि करी सब रस होते श्रृंगारे अधिक मात्र जिस समय में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत कह रहे हैं तटस्थ होकर के विचार करके कह रहे हैं प्रारंभ में और दशम स्कंद में पहुंचने पर उनकी तटस्थता हट गई तटस्थ चेष्टा कर रहे थे किंतु तटस्थ नहीं रह सके कंस को गाली दे दिया या और लीलाओं का सूर्य पर इसलिए ये सब विचार साधन साधन करो इसके बाद में हम लोग साधन करेंगे साधन के द्वारा कुछ कुछ समझ में आएगा केवल विचार ग्रहण करने से नहीं है। साधन के साथ साथ में हरिनाम वैष्णवों की सेवा गुरु की सेवा और जो उपाय बतलाए गए उसके साथ साथ में करने से ये समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवा इसको भी याद रखना चाहिए। दास्य सत्य बाचल और मधुर रस उत्तरोत्तर कृष्ण सुखा स्वादनेर आधिक्य कृष्ण दास्य से सत्य सत्य से बात्सल्य
और बात्सल्य से मधु, इसका निर्जास साधन करके क्रमशः अधिक प्रीत होते हैं। इसलिए कृष्ण आस्वादन अधिक है, जैसे कि भक्त स्वामी सिंधु के दक्षिण विभाग में स्थाई भाव प्रकरण में यह बतलाया गया, जो थोत्परम असौ विशेष उल्लास मयती रति बासने आसाद्य भाषते क्वापि कस्यचित। रति बासनाया, बासना मैंने कहा ये बासना ही एक अद्भुत की है। कर्म की बासना होगा संसार में आ जाए, कृष्ण सुख को देने की बासना हृदय में आई, सेवा की बासना बस ऊपर उठेंगे। और रति रतिर बासना आस्वाद, रति में जो बासना है कृष्ण को सुख देने की वासना कामना, यही कृष्ण को अधिक आस्वाद कराती, इसी के ऊपर में सब कुछ निर्भर है। रति रहने पर भी वासना नहीं रहेगी तो काम नहीं, कृष्ण को सुख देने की वासना शांत से अधिक दास्य में, दास से अधिक वासल सख्य में, उससे अधिक वासल्य में, उससे भी अधिक मधुर में है। स्वादी स्वादी भाषते क्वापि कस्यचित, रति उत्तरोत्तर आस्वादन विशेष से उल्लासमयी प्रतीत होती है। गुड़ भी मीठा है, ये गन्ना भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, खांड भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, शीतकोल गुड़ भी मीठी है, मीठा है, किंतु सब मीठा ये गुणमान नहीं है। ठीक उसी तरह से सभी रस मीठे हैं, शांत रस भी मीठा ही है, सभी शांत को रस ग्रहण किया है तो उसमें रस निष्ठा है कृष्ण के प्रति, इस निष्ठा की वजह से ही उसको रस मिली, किंतु मधुर में ये सबसे विशेष है। वो स्वादी वासना उसकी है, शांत में यह वासना कृष्ण को प्रीति करने की सुख देने की वासना संकुचित होती है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, दास में कुछ इससे अधिक है, सख में और भी अधिक है, इतने से उत्तरोत्तर वो बढ़ता जाता है। इसलिए वासना भेद से का अति कस्यचित कस्यचित भक्तस्य स्वादी भासते, भक्तों को भी और भगवान को भी दोनों को ये प्रकाशित होती है, रस प्रकाशित होता है। अतः मधुर रस कही तारना सखिया पर किया भावे दिवित संस्थान, यह मधुर रस भी दो प्रकार का स्वकिया और वर्गीय। स्वकीय माने विवाह विधि से वेद विहित विधियों के द्वारा पाणी ग्रहण के द्वारा एक पति एक पत्नी को ग्रहण करता है और पत्नी भी एक पति को ग्रहण करती है और पातिक धर्म भक्ति धर्म को निभाती है दोनों पति और स्त्री, तो ऐसी स्त्री को स्वकीय कहा जाता है। और परकीय विवाह बंधन विधि जो है वेद शास्त्र की, उन विधियों की परवाह किए बिना विवाह हो और न हो, प्रक्रिया भी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कन्यका और परोढ़ा। कन्यका में विवाह नहीं हुआ और परोढ़ा में विवाह हुआ है,
तो वो दो हैं, तो विवाह हो अथवा न हो, विवाह विधियों की अंतर्गत नहीं, प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति वैसा भाव है, प्रेम की प्रधानता, प्रेम के ऊपर में, अनुराग के ऊपर में निर्भर करके कृष्ण से वो अनुराग के वश में मिलती है, इसको कहते हैं परकिया। परकिया भावे अति रसर उल्लास, स्वकिया में एक घंटी के अंदर में बन जाता है, सीमा में आदमी बन जाता है, दोनों पति और स्त्री दोनों उस घंटी से, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते, किंतु परकिया के लिए मुक्त पग्रह, कोई बंधन नहीं, किंतु एक बंधन है, वो बंधन नहीं बल्कि स्वेच्छा से ही ऐसा होता है, कृष्ण से जो प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता, उस रूप में नहीं, कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रियतम है, कृष्ण से भी करें दूसरों से भी करें ये लोक निंदनीय है और सब प्रकार से खराब, ऐसा नहीं, कृष्ण ही एकमात्र है। तो पैतिया भाव अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार नाही अनंत वास, ब्रज के अंतर्गत छोड़ करके और कहीं भी इसका निवास नहीं है, इसलिए हम लोग ब्रज में अभी आए, हम लोग भी करें ये नहीं, ये मतलब इसका नहीं है, ब्रज मने यहां कर रहे हैं गोलोक वृंदावन का ब्रज, उसके अतिरिक्त और कहीं बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए पहले लिखा बैकुंठा बीते ये नहीं, एकमात्र ब्रज में है। ब्रज क्या चीज है, ब्रज कहां है, परब्रह्म के ऊपर भाग में, यहां पर की परब्रह्म समाप्त होने पर है, उसमें एक कृष्ण लोक है, इस कृष्ण लोक को पहले प्रारंभ में उसको नीचे वाले भाग को गोलोक कहते हैं, ये एक परीक्षा की भांति है, परीक्षा मैंने क्या, प्राची मैंने एक पहले किले होते थे, किला या नगर, उसके चारों तरफ में महल जैसा बनाया जाता, पानी जैसे दिल्ली में जाओ, आगरा में जाओ, किला के बाहर में हाथपुर में वैसा बनाया जाता गया, पानी भरा रहता था जो कोई उसको पार करके नहीं गया, इसलिए ये जो बाहर की प्राचीर समझो या नाला समझो, इसको कहते हैं यहां पर ऐश्वर्य भाव है और स्वकीय भाव है, राधा जी रह सकती हैं, राधा जी गोपियां सब यहां, किंतु सबका स्वकीय भाव, कैसे इसको समझने के लिए पीछे से देखो, भक्त स्वामी सिंधु इत्यादि, इसके बाद में ऊपर का थोड़ा सा भाग जो है वो हुआ द्वारका, और आगे चलो तो गोकुल ब्रज इत्यादि उसका नाम है, वही उस ब्रज में गोलोकम जत्तु गोकुल वैभवम, गोलोक जो है वो गोकुल का या ब्रज का वैभव है, जैसे द्वारकाधीश मस्त सुरेश ब्रजनंदन नंदनंदन के नंदनंदन जो है उनके वैभव है, वासुदेव जो है या नारायण ये वैभव है, किनके वैभव है, ऐसे ही इसको समझो, ब्रज का वैभव ये गोलोक है, गोलोक के अंतःपुर का नाम, गोलोक का हृदय जो है वो ब्रज है, इस रूप में समझ, शरीर तो एक ही किंतु जैसे प्राण है उसका अंतर, उसको कहते हैं ब्रज, उस ब्रज के बिना यार अन्यत्र नहीं दास, अन्यत्र कहीं भी निवास नहीं, और इस ब्रजपुर में ब्रज बधु गणे एई भाव निरुपति, ब्रज में जो बधुए हैं, उस ब्रज में जो बधुए हैं, वहां पर भी बधुए हैं, उनका यह भाव निरवधि माने निरंतर, माने सर्वकाल में, वो भविष्यत वर्तमान समस्त कालों में ये भाव रहता है, सात ब्रज के लोगों को, तो उसमें नहीं ये तो करें, ये जो ब्रज का जो पार्थिव भाव है, यहाँ के ब्रज के जो बधुए हैं इनमें निरपति रहता है, तार मध्य राधार भावे अवधि प्रौहल्य निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण, अतएव यही भाव अंगीकार करी वो ब्रज बधुओं का भाव अंगीकार करके, कहा जो लोग ब्रज में है भाव अंगीकार करी साधुले ने निज बंछा गौरांग श्रीहरि, गौरांग रूप में श्रीहरि कृष्ण ही, श्रीहरि माने क्या कृष्ण, अपने भाव का साधन किया साधन, किंतु अंगीकार का, अंगीकार माने क्या है, अंगीकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अंग इकार हुआ ना, अंग माने क्या, इसने ग्रहण किया राधा जी का भाव लिया अपने अंग में, उसको अंगी बना करके आए, अंगीकार किया और लेकर के अपने भावों का आस्वादन किया, यहां ऊपर से स्वीकार होता है किंतु शाब्दिक अर्थ ही। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं आप तीन रस अपेक्षा दास्य सत्य वासन मधुर वृंदावन में है, शांत अवस्था प्रकाश वृंदावन में नहीं है, क्यों नहीं है, शांत रस आता है किंतु बदल जाता है वो, या तो दास्य या सत्य, वो अपना स्वरूप ही नहीं रख पाता, शांत रस के जितने भी पात्र हैं वो अपना स्वरूप ही बदल जाते हैं, कभी शांत रस मधुर में आ जाता है, कभी शांत रस वात्सल्य में आ जाता है, कभी दास्य में आ जाता है, अपना रूप ही नहीं रख पाता, जैसे लताएं शांत हैं किंतु बन जाती हैं क्या, मधुर में आ जाती हैं, गायें ये वात्सल्य जैसा शांत किंतु बन का जाता है एकदम वात्सल्य बन गया, ये बालू रोटी जमुना का ये क्या चीज है, ये शांत किंतु क्या बन जाता है, मधुर रस का सहायक बन जाता है, जिस बालू के ऊपर में गोप गोप कृष्ण और सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, उसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर में दे रहे हैं, इसलिए कह रहा है शांत, इसलिए शांत नहीं रहा, घास क्या चीज है, शांत मेघ हिरण उसको गोपियों ने कैसा वर्णन किया है, इस तरह से, इसलिए कहते हैं ये तीन रस में शांत को नहीं लिया केवल दास सख वात्सल्य को लिया, ये जो तीन हैं इनके भी अपेक्षा भी श्रृंगार की माधुरी है, फिर उछलता नहीं वहां, इस रस में प्रेम मधुर रस में सबसे में उच्छलित होता है, उच्छलित किसको कहते हैं, घड़े में पानी है अल्ले से छलक जाता है, तीनों में उतना नहीं होगा, मधुर रस में यह छलकता हुआ यह रस है, अधिक रहने के कारण इसको मधुर रस कहा जाता है, वह मधुर रस दो प्रकार का स्वकीय और परकीय हमने बतलाया, कृष्ण को विवाहित पति के रूप में ग्रहण कर मधुर रस उपस्थित होने पर उसको स्वकीय मधुर रस कहते हैं, जैसे द्वारका में महिषियां, सीता जी का क्या लिया जाएगा, मधुर रस है कि नहीं, स्वकीय मधुर रस गड़बड़ी क्या कुछ है, मधुरस एक साधारण रूप में कुछ कहा जा सकता है किंतु नहीं कहा जाएगा, क्यों, द्वारका में मधुरस नहीं, द्वारका में मधुरस स्वकिया में बहुत सी नायिकाएं हैं, देखो एक बार पूरे ना जाएगा,
स्टेबल
तो सुनाइए द्वारका में बहुत सी नायिकाएं हैं और अयोध्या में कितनी नायिकाएं हैं? नायिकाई नहीं है वहां पर, वो क्या है? धुरंधर पतिव्रता है। पति छोड़ने पर भी उनको जो भी कष्ट देना चाहेंगे कष्ट देने पर भी ये चूप तक नहीं करेंगे, कुछ भी प्रतिवाद नाम की कोई चीज नहीं। मान नहीं होगा, सीता जी को कभी मानूंगा ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में या किसी भी शास्त्र में नहीं दिखा, किंतु द्वारका में ऐसी कोई महसी नहीं है जिसको मान नहीं होता। वो गोपियां कह रही हैं तू जा अपने प्रभु को कह, और वहां पर जाके उससे मांगो, कुछ भी मांगेगा वो दे देंगे, क्योंकि आज एक और अनंत काल के लिए एक रूठेगी एक मानेगी, जो मानेगी उसके पास में जाना जिसको मना लिए, और जब उठ गई उसके पास में मत जाना, तो दूसरे दिन और एक मान जाएगी फिर उसको देना, तीसरे दिन और एक उठेगी, रोज रोज उठेंगी और मनाने का काम चलता रहेगा, तुमको रोज उपहार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और यहां पर तुम हम लोग क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं, कृष्ण ने हमको रास्ते में खड़ा कर दिया, इसलिए हम लोगों के पास में थे जाओ उन्हीं के पास में, इसलिए वहां पर सबको मान होगा, वहां पर मान नहीं होगा, जैसा भी सताना है वो सता लें। राधा जी कहती हैं नागनी आपने दुख सबे बांछी बारिश हो मोर जिले दिल दुख तार महासुख से दुख कहती तो है किंतु कहां तक पालन करती हैं ये विचार करो। देखो तो फिर उनका चंद्रावली इत्यादि के साथ में विवाद कैसे मान क्यों हुआ उनको, क्यों मान हुआ? राशस्थली में सब गोपियों के साथ में उनको आनंद ही होना चाहिए, तब शांत रस हो जाता। इसलिए अयोध्या में ये सब चीजें नहीं है, एक है और उनको भी घर से निकाल देंगे, भले ही घर में उनका अर्चन पूजन कर रहे हैं किंतु निकाल देंगे। और यहां पर सबको मान होता है, सबको मान को साधन करते हैं, यहां पर मित्रों में भी मान हो सकता है, दास में भी हो जाएगा, किंतु वहां पर किसी में भी नहीं होगा, न लक्ष्मण जी को न भरत जी को, क्योंकि वहां पर सख्या ही नहीं है, बस दास से शुद्ध दास है। अब ब्रज में दास भी शुद्ध नहीं है, यहां पर सख्य से मिश्रित है, शुद्ध दास नहीं, इसलिए शुद्ध दास नहीं, शुद्ध दास तो बैकुंठ में और घर में हो, यहां पर कुछ मिश्रित भाव सख्य का भाव बासल्य का भाव लेकर के है, किसी किसी का मधुर का भी मिश्रण है, जैसे सुगल लवंग उज्जवल मधुमंगल, इनका कुछ मधुर का भी भाव है। कृष्ण को उपपति से समझकर और इनसे जो प्रेम करती है रात के अनुसार में मिलती है, इनको कहते हैं पारकीय मधुर रस। मधुर रस के जो विचार करने वाले हैं वो एक बात एक वाक्य से इस सिद्धांत को ग्रहण किया है, पारकीय भाव में ही मधुर रस का और अधिक उल्लास है, और वह बिना ब्रज के कहीं अन्यत्र उसकी स्थिति नहीं, केवल ब्रज में है और कहीं भी नहीं, द्वारका इत्यादि में भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण नित्य गोलोक बिहारी है, गोलोक में रहते हैं, गोलोक और ब्रज में भेद नहीं समझते, गोलोक को ही ब्रज समझ लेते हैं, ब्रज को ही गोलोक समझते हैं, कोई भी उसमें वैशिष्ट नहीं स्वीकार करते, कुछ समय के लिए इस जगत में उदित होकर के अपनी उसी लीला को इस जगत में प्रकट करने पर वो क्या करते हैं, इस जगत में उदित होकर के इस जगत में ही पारकीय भाव से लीला करते हैं, और जब जाते हैं तो इस सबको भूल जाते हैं। आया समझ में कुछ? उस जगत में कुछ लोगों का विचार है
इस जगत में परकीय भाव से भजन मिलन
परकीय भाव से मिला किया उस जगत में नहीं है वहां पर स्वकीय है। जी गोस्वामी ने ऐसा लिखा है कहते हैं वो जी गोस्वामी ने ऐसा कहा है क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही छोटी सी है इसलिए जी गोस्वामी को नहीं समझ परीक्षा इत्यादि नहीं समझते परीक्षा क्या है स्वेच्छा क्या है। किंतु गोस्वामी का यह विचार नहीं है श्रील भक्त विनोद ठाकुर जी का यह प्रोग्राम कमेंट उनकी व्याख्या गोस्वामियों के विचार से ब्रज विहार नित्य है ब्रज का विहार भी नित्य है। नित्य चिन्ह धाम गोलोक के नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ब्रज है। गोलोक बाहरी और गोलोक के भीतर का अंतरंग प्रकोष्ठ इसका नाम है ब्रज। जिस प्रकार से प्रपंच अवतार में कृष्ण लीला कर रहे हैं नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार की लीला विद्यमान है। उसी को देख करके उन्होंने सोचा जगत के जीवों पर कल्याण करने के लिए उसी को लेकर के उन्हीं परिक्रमाओं को लेकर के और इस जगत में और लोगों को दिया प्रेम। ब्रज में पार्थिव रस की नित्य स्थिति है। कविराज गोस्वामी ने तृतीय परिच्छेद में इसके पहले में बतलाया है अष्टाविंश चतुर्युगे दातरे रसे से ब्रज रस ही तो है कृष्ण प्रकाश। इस द्वापर के द्वापर में मैंने ये दिया अष्टाविंश 28वें चतुर्युग के द्वापर के शेष में ब्रज सहित कृष्ण ब्रज के सहित आते हैं और यहां लिखती है कि बिना ब्रज बिना यार अन्यत्र नहीं जाता। तो ब्रज को लेकर के आपके पार्थिव भाव नहीं आया ब्रज में नित्य का और कहते हैं निरवधि सब समय इसलिए है। इसलिए आधुनिक लोग जो टीका इत्यादि कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रंथ रच रहे हैं बेका उनको जो पढ़ेगा निश्चित रूप में उनके विचारों को लेकर के अभ्रष्ट होगा इसलिए उन लोगों के ग्रंथों को नहीं देखते। ये सिद्ध महापुरुषों के विचार जो हैं उनको ग्रहण करो भले ही विचार नहीं आए किंतु उनका विचार नहीं आए तो अभी हृदय कूड़ा रहेगा तो एक दिन इनका विचार के लिए और वो विचार को लिख लिया हृदय में तो फिर उसका जन्म जन्मांतर बिगड़ा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ब्रजर सहित इस शब्द से स्पष्ट समझा जाता है ब्रज नाम की एक चिन्ह धाम में अचिंत पीठ है और उस पीठ में के सहित 84 पुरुष ब्रज की भूमि को और भावों को लेकर के जगत में पधारे इसलिए 84 पुरुष की भी परिक्रमा होती है। इसके साथ में प्रपंच में उदित हुए थे गोलोक के अंतपुर में वह नित्य ब्रज गोलोकपुर के अंतर में जो प्रकोष्ठ है वहां जो ब्रज है वहीं पर यह पार्थिव भाव है और कहीं नहीं है। इसलिए जब वो प्रकोष्ठ यहां पर उतरता है तो इस जगत में वहां पर भी ऊंची भी उतरता है वहां नहीं है यहां हो जाएगा यह असंभव क्यों ना तथा तो गोलोक अपेक्षा अनंत गुण उत्कृष्ट अवस्था गोलोक की अपेक्षा भी अनंत गुण उत्कृष्ट रस का वहां पर स्थिति है। गोलोक में जो है गोलोक में केवल स्वकीय ऐश्वर्य पर भाव और वहां पर कोटि गुण से श्रेष्ठ प्रकट ब्रज में प्रकट ब्रजे अप्रकट ब्रजे विचित्रता जीव चक्षु उपलब्धि से कहते ये जो प्रकट ब्रज है अभी जो कृष्ण की लीला हुई इसमें वो अप्रकट जगत की जो विचित्रता है वही परिलक्षित होती है। इस थोड़े से समय के लिए बस यही थोड़ा सा भेद है वो वहां है ये यहां दोनों लीलाओं में एक ही बात है। बल्कि एक जगह कहीं लिखा गया है ना गोकुल में गोलोक को दर्शन करो और गोलोक में भक्तों ने ठाकुर ऐसा इसको समझने की चेष्टा करो ये सब चीजें। एक ब्रज बधु
न उसमें भी कहा स्वरूप सिद्धि काले गोकुल गोलक दर्शन वस्तु सिद्धि गोलक गोकुल दर्शन
यही यही चीज। अभी भाव अवस्था तक में गोकुल में गोलोक और शुद्ध अवस्था में गोलोक में गोकुल का दर्शन। ब्रज बधु भावे अवधि अत्यंत सीमा किसमें है श्रीमती राधिका जी में परिपक्व विमल रूप भाव रूप राधा ब्रजगत प्रेम ही सर्वोत्तम। राधा जी का जो भाव है उसमें सर्वोत्तम भाव है। कृष्ण का माधुर रस का जितना दूर तक आस्वादन संभव है वो राधा जी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उस भाव को राधा जी के भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही अवतरित होकर के राजमार्ग का प्रचलन उसको प्राप्ति करने के लिए मार्ग का प्रचलन किया और साथ साथ में स्वयं रस का जा सके। यदि वो नहीं मिला ऐसा करते और राजमार्ग का प्रचलन नहीं करते किसके द्वारा कराया अपने भक्तों के द्वारा अपने स्वयं साधन किया। उनको क्या जरूरत है ये विधि विधानों को माने किंतु मर्यादा का भी पालन किया उन्होंने सन्यास की मर्यादा जबकि सन्यास लिया तब गृहस्थ मरे तब गृहस्थ धर्म का जो मर्यादा है उसको पालन किया। इस तरह से सब समय अपना मर्यादा का पालन किया ये हम लोगों के लिए रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद और सब गोस्वामियों के द्वारा जगत ने यह प्रकाश किया। हम लोग उनके पद को अनुसरण करके इन चीजों के प्रति हम लोगों का भी लोभ हो इसके लिए हम लोग प्रयत्न करें। आज यहीं तक रहे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
ज्ञातेनिपत्तभूमि दण्डवत उद्भटार्ति आश्वाप्रशाद्मबुधस्वजलश्च कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनम् अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जग्दं जागुदरोचि संविदभतं पत्तम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदि लसद्दानाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजम् ध्याये दाम भक्त्या विहीनाय पराधलच्छ क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृतामयीं त्वां शरणम् प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय यं प्रव्यजन्तमनुते तमपेतकृत्यम्
दैतायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तम तया करवो भिने दो तं सर्वभूत मुनिमान तोस्मि तवई वास्मि तवई वास्मि न जीवान तया बिना इति विज्ञाधे तम नाम चैतन्य चाकू मिला चतुर्थ परिच्छेद लिखा गया इसमें धर्म छाड़ी राजे तुह करे मिलन कभू मिले कभू न मिले दैवर भतन ए सब रस में ज्ञात कर आस्वाद एक बारे करीब सब भक्त प्रसाद इसके संबंध में श्री भगत कुरुणित कलीला शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने थोड़ा सा कुछ लिखा है, हम उसका पाठ कर रहे हैं। अनंत लीला माए भगवान की विविध प्रकाश मुक्ति नित्य विराजमान है। भगवान वैकुंठ में जो लीलाएं करते हैं वो अनेक उसके प्रकोष्ठ हैं। कृष्ण लीला के भी अनेक प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ माने क्या? एक एक लीला का भाव, जो जो लीलाएं यहां पर अवतरित होती हैं सब वैकुंठ में है। जैसे मत्स्य कुर्मा बराह निसिंह बामन परशुराम राम इत्यादि सब जो लीलाएं हैं उस सबका भी वैकुंठ में एक एक प्रकोष्ठ है। तो श्री गोलोक वैकुंठ के का विकृत प्रतिफलन यह देवी धाम है। ये देवी जो धाम है उसी जगत का एक विकृत प्रतिफलन। विकृत प्रतिफलन माने क्या? बिगड़ा हुआ छाया है, उल्टा छाया में जैसे प्रतिबिंब में दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना, ये दिखता है दर्पण में। अच्छी तरह से लक्ष्य करेंगे, ये आप इधर, ये आप उधर दिख पड़ेंगे। ऐसे ही उस जगत की विकृत छाया प्रतिफलन ये जगत है। वहां पर शुभ प्रेम है और इस जगत में विकृत है, इसलिए इसको काम करते। वहां पर प्रेम है, प्रेम से सब व्यवहार करते हैं। यहां पर मोह से सब भी व्यवहार करता है, मोह आसक्ति है। वहां पर प्रेम के विभक्त तरह तरह रूप में दिखे जाते हैं और यहां पर मोह का काम क्रोध लोभ मार मोह मात्र लड़ाई झगड़ा मारपीट ये मोह के कारण होता है। जिसमें जितना अधिक मोह और आसक्ति होता है उतना ही अधिक लड़ाई झगड़ा क्रोध इत्यादि में वो लग जाता है। वो ठीक ही नहीं कर पाता कि ये ठीक नहीं है। वहां का प्रेम सर्वोत्तम, गोपियों का प्रेम, इस जगत में शांत जो योगी है उनका प्रेम उच्च कोटि का माना जाएगा। यहां पर मर्यादा अच्छी मानी जाएगी और गोलोक के ऊपर में वृंदावन में मर्यादा के विपरीत वो धर्म छाड़ी रागे तुम्हें करे मिला, ये बतला रहे। प्रपंच के अंतर्गत में जितनी भी प्रकार की विचित्रताएं हैं, जितनी भी विचित्रताएं हैं वो सब गोलोक वैकुंठ के अनुरूप होने पर भी इसमें परिच्छेद है। परिच्छेद माने व्यवधान, बाधा, अवर्था। इसमें अवर्था माने त्रुटियां, दोष और हेयता और अनुपादेयता, अनुपात दिया था मैंने, तरह तरह के इसमें विभिन्न त्रुटियां दोष इत्यादि हैं। और वहां पर काल का कोई विक्रम नहीं, यहां पर काल का विक्रम है, उस प्रेम में काल बाधा नहीं देगा। और यहां पर अभी आज एक मित्र है, खुश स्नेह का पात्र है, और दो मिनट में दस मिनट में क्या हो जाएगा, महान घोर शत्रु हो जाएगा। और हम ये साथ दारा सिको और ये सब एक साथ में जन्मे भाइयों में बड़ा प्रेम था, आज जब राज्य का मामला आया तो क्या हुआ, एक दूसरे को काट दिए। ये जगत ऐसा है। अभी कोई मालूम होता आज बहुत प्रेमी है, अब थोड़े दिनों में थोड़े देर में क्या होगा, वो बदल करके ऐसा हो जाएगा, मां सिंह का रूप धारण करेगा, कंट्रोल नहीं कर सकेगा अपना मोह, ये क्रोध के रूप में आ जाएगा। इसलिए इस जगत में प्रेम में वहां तो शुद्ध है, और यहां इस जगत में कोई प्रेम आसक्ति और मोह इत्यादि रूप में कर सकते, कभी कभी भीषण और उपधारण कर लेती। इसलिए इसमें काल क्षुब्ध है, काले मित्र अकाले अपर, इसमें किसी का दोष नहीं, काल का दोष है, अपना भी कुछ दोष है, प्रभु का कोई दोष नहीं। वैकुंठ में विशुद्ध सत्व है, वहां पर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबका शरीर विशुद्ध सत्व से बना है। और इस जगत में एक तो मिश्र और दूसरा गुणमय सत्व, जैसे मिश्र सत्व मैंने हमारी आत्मा अनुरूप में शुद्ध है, किंतु मन बुद्धि अहंकार और ये सब मिलकर के एक खिचड़ी बन गई है, इसलिए इसको मिश्र सत्व कहते हैं। अभी हम लोगों का मिश्र सत्व है, शुद्ध सत्व नहीं है, आत्मा भी अभी शुद्ध नहीं। आत्मा शुद्ध होने पर भी ऐसे मालूम पड़ता है ये इसमें मिल करके मैं ये हूं, इसलिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि इस शरीर में। इसलिए यदि प्रभु की कृपा होगी, हरि कथा सुनेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे, दीनता आएगी, तब विषय छाड़िया कभी शुद्ध होगा, तब विषय छोड़ करके हम कभी मन शुद्ध होगा, ऐसे नहीं होता। विषय वो अश नित्य अनुभूति में विविध लीला वैचित्र नित्य वर्तमान, जहां पर शुद्ध सत्व है या विशुद्ध सत्व है, वहां पर कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति नित्य शुद्ध है। और यहां पर अभी मिश्र सत्व में नहीं है, और गुणमय सत्व क्या, आत्मा का ज्ञान एकदम नहीं, ये शरीर का ही ज्ञान, ये सब गुणमय सत्व है। गुणमय सत्व में भक्ति का विचार उतना नहीं, जागतिक चीजें ही, भक्ति में भी यदि भक्ति भी